एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं जरूरी किताब पर बात करने वाले हैं, एंडी ब्रोफ की ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव।
हाँ, ये किताब उन बड़े बदलावों के बारे में है जो किसी भी बिजनेस या करियर में आ सकते हैं। ग्रोव इन्हें कहते हैं स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स या SIPs।
SIPs मतलब वो मोड़ जहां से या तो आप ऊपर जाते हैं या फिर
नीचे।
बिल्कुल। और ग्रोव का मानना था कि इन मोड़ों पर टिके रहने के लिए थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ा सा पैरानोइया जैसा वो कहते हैं, जरूरी है।
और एंडी ग्रोव के बारे में भी थोड़ा बताइए, ये सिर्फ कोई थ्योरी देने वाले प्रोफेसर तो नहीं थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी अपनी कहानी कमाल की है। हंगरी में पैदा हुए, नाजी दौर देखा, क्रांति झेली, फिर अमेरिका आए, केमिकल इंजीनियरिंग में PhD की।
अच्छा, लेकिन असली पहचान बनी इंटेल से। सोचिए, 1968 में इंटेल ज्वाइन किया, सिर्फ तीसरे एम्प्लॉई थे वो, और फिर प्रेसिडेंट, CEO, चेयरमैन सब बने।
वाह।
और इंटेल को मेमोरी चिप कंपनी से दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोप्रोसेसर कंपनी बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। सिलिकॉन वैली के मतलब निर्माताओं में से एक माने जाते हैं वो।
तो मतलब उन्होंने जो लिखा वो खुद जिया भी है।
हाँ, और यही इस किताब को खास बनाता है। ग्रोव ने इंटेल में एक बहुत बड़े संकट को संभाला था जब उन्हें अपनी पहचान, अपना मुख्य बिजनेस मेमोरी चिप्स छोड़कर माइक्रोप्रोसेसर पर दाव लगाना पड़ा। ये कोई किताबी बात नहीं थी, ये जीने मरने का सवाल था।
इसीलिए शायद उनके विचार आज भी इतने काम के लगते हैं, चाहे वो बड़ी कंपनी हो या किसी का अपना करियर।
बिल्कुल। तो क्यों ना इंटेल की कहानी से ही शुरू करें, देखें कि ये साइप्स और पैरानोया का मतलब क्या है।
हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो इंटेल की शुरुआत कैसे हुई?
इंटेल शुरू हुआ मेमोरी चिप्स, खासकर DRAM बनाने से, और शुरू में काफी सफल भी रहे। उस समय कंप्यूटर इंडस्ट्री आज जैसी नहीं थी। बड़ी कंपनियां जैसे IBM, वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड थी।
वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब सब कुछ खुद ही करना, चिप्स से लेकर पूरा कंप्यूटर बेचने तक।
हाँ बिल्कुल, चिप्स, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, सब कुछ। लेकिन 80 के दशक के बीच में मामला बदलने लगा। जापान की कंपनियां DRAM मार्केट में आ गईं।
और वो बहुत तगड़ा कंपटीशन लाईं।
जबरदस्त। उनकी लागत कम थी, क्वालिटी बेहतरीन, इंटेल जैसी अमेरिकन कंपनियां टिक नहीं पा रही थीं। अब सोचिए इंटेल के अंदर क्या माहौल होगा।
मुश्किल, इनकार, कन्फ्यूजन, समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करें।
बिल्कुल। ग्रोव इसी दौर को कहते हैं वैल्यू ऑफ डेथ, मौत की घाटी, जब पता है कि कुछ बदलना है पर क्या और कैसे ये साफ नहीं।
और इसी मुश्किल दौर में वो मशहूर बातचीत हुई थी ना, है ना, ग्रोव और गॉर्डन मूर के बीच।
हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। ग्रोव ने इंटेल के को फाउंडर और चेयरमैन गॉर्डन मूर से पूछा, अगर हमें निकाल दिया जाए और बोर्ड एक नया CEO लाए तो वो क्या करेगा।
बड़ा अजीब सवाल है।
हाँ, लेकिन मूर का जवाब सीधा था, वो हमें मेमोरी बिजनेस से बाहर निकाल देगा।
तो फिर ग्रोव ने क्या कहा?
ग्रोव ने तुरंत कहा, तो फिर हम खुद ही बाहर जाकर वापस अंदर आकर ऐसा क्यों नहीं करते। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक तरीका था उस इमोशनल बैगेज से बाहर निकलने का जो कंपनी को अतीत से बांधे हुए था।
मतलब सिचुएशन को एकदम ऑब्जेक्टिवली देखना, बिना किसी मोह के।
एग्जैक्टली। और ये फैसला लेना आसान नहीं था। मेमोरी इंटेल की पहचान थी, उसे छोड़ना अपनी जड़ें काटने जैसा था।
लेकिन उन्होंने ये किया, मेमोरी छोड़ी और पूरा फोकस माइक्रोप्रोसेसर पे लगाया।
हाँ, बहुत दर्दनाक फैसला था पर जरूरी था। और नतीजा, इंटेल एक संघर्ष करती कंपनी से PC रेवोल्यूशन के सेंटर में आ गए। इंटेल इनसाइट का नारा दुनिया भर में गूंजने लगा।
कमाल है, ये कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी वापसी कहानियों में से एक है।
और ये ग्रोव के SIP के सिद्धांत को साबित करता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि आजमाया हुआ सच था।
तो अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं ग्रोव के विचारों में। ये स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स SIPs, इनका असली मतलब क्या है?
मतलब ये वो बड़े मोड़ हैं जब बिजनेस के खेलने के नियम ही बदल जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी में बदलाव हो सकता है, कंपटीशन में बदलाव, रेगुलेशन में बदलाव, कुछ भी।
और ये खतरनाक भी हो सकते हैं और मौका भी दे सकते हैं।
बिल्कुल। अगर आप इन्हें पहचान नहीं पाए या गलत कदम उठा लिया तो आप खत्म हो सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से संभाला तो ये आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं।
और ग्रोव कहते हैं कि इन्हें पहचानने में चूक क्यों होती है, सफलता के कारण?
हाँ, ग्रोव का मानना था कि सफलता ही सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। सफलता से आता है आत्मसंतोष, और आत्मसंतोष आपको अंधा बना देता है। आप बदलाव को देखना ही नहीं चाहते।
तो इसका इलाज है कंस्ट्रक्टिव पैरानोया। ये क्या चीज है?
ये बेवजह का डर या वहम नहीं है, ये है लगातार चौकन्ना रहना, अपनी ही सोच पर, अपने ही तरीकों पर सवाल उठाते रहना, और उन लोगों को सुनना जो शायद अच्छी खबर नहीं ला रहे।
जिन्हें ग्रूव कैसेंड्रा कहते थे, वो पौराणिक पात्र जिसकी भविष्यवाणी कोई नहीं सुनता था।
हाँ, अक्सर ये कैसेंड्रा कंपनी में फ्रंटलाइन पर काम करने वाले लोग होते हैं। वो सेल्स वाले, वो कस्टमर सर्विस वाले, वो बदलाव को सबसे पहले महसूस करते हैं, लेकिन उनकी बात ऊपर तक पहुंच नहीं पाती या अनसुनी कर दी जाती है।
तो लीडर्स को एक्टिवली इन आवाजों को सुनना चाहिए।
बिल्कुल, और सिर्फ सुनना नहीं, उनकी बातों को गंभीरता से लेना, क्योंकि बदलाव अक्सर छोटे मोटे नहीं होते। ग्रूव इन्हें 10x बदलाव कहते हैं।
10x मतलब 10 गुना बड़ा?
हाँ, मतलब इतना बड़ा कि वो पूरी इंडस्ट्री को हिला दे। जैसे इंटेल के लिए जापानीज DRM कॉम्पिटिशन था, या PC का आना था। ये छोटे मोटे एडजस्टमेंट से काम नहीं चलता, आपको बुनियादी तौर पर बदलना पड़ता है।
इन 10x बदलावों को पहचानने का कोई फ्रेमवर्क भी दिया ग्रूव ने?
हाँ, उन्होंने माइकल पोर्टर के मशहूर 5 फोर्सेस मॉडल को आगे बढ़ाया। पोर्टर के 5 बल थे, मौजूदा कॉम्पिटिटर, नए कॉम्पिटिटर, सप्लायर पावर, कस्टमर पावर और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट।
हाँ, ये तो बिजनेस स्कूल में पढ़ाते हैं।
ग्रोव ने इसमें 6ठा फोर्स जोड़ा, कॉम्प्लीमेंटर्स।
कॉम्प्लीमेंटर्स, इसका क्या मतलब हुआ?
ये वो बिजनेस या प्रोडक्ट है जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाते हैं।
अच्छा।
जैसे इंटेल के प्रोसेसर के लिए माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम।
अच्छा, हाँ, समझ गया। विंडोज के बिना प्रोसेसर का उतना महत्व नहीं, और प्रोसेसर के बिना विंडोज का।
बिल्कुल, ये एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ग्रोव का कहना था कि इन 6 शक्तियों, 5 पोर्टर वाली और 6ठी कॉम्प्लीमेंटर्स में से किसी में भी अगर 10x बदलाव आता है तो वो एक सिप ला सकता है।
और जब ऐसा सिप आ जाए, मतलब वो मौत की घाटी वाला दौर, तो लीडरशिप को क्या करना चाहिए?
ग्रोव ने इसके लिए 2 स्टेज बताए। पहला स्टेज है जब अनिश्चितता बहुत ज्यादा हो, तब आपको बहस को बढ़ावा देना चाहिए, अलग अलग राय सुननी चाहिए, छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए। ग्रोव कहते थे, लेट केओस रेन, यानी अराजकता को हावी होने दो।
अराजकता? ये तो अजीब लगता है।
मतलब कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, नए आइडियाज को आने दो, उन्हें टकराने दो, ताकि आप सारे विकल्प देख सकें। लेकिन ये हमेशा नहीं चल सकता।
हाँ, फिर तो फैसला लेना पड़ेगा।
बिल्कुल, जैसे ही प्रयोगों और बहस से कोई दिशा दिखने लगे, थोड़ी स्पष्टता आने लगे, तब दूसरा स्टेज आता है। अब पूरी ताकत से, पूरी निर्णायकता से उस नई दिशा में बढ़ना है। अब है रेन इन केओस, यानी अराजकता पर लगाम कसो।
मतलब अब सारे रिसोर्स, पैसा, लोग, मैनेजमेंट का ध्यान, सब कुछ नई दिशा में लगा दो।
हाँ, और पुरानी चीजों से पूरी तरह नाता तोड़ लो, भले वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।
और यहीं पर वो भावनात्मक अलगाव वाली बात आती है ना, अतीत को छोड़ना।
बिल्कुल, इंटेल के लिए मेमोरी बिजनेस छोड़ना सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, वो उनकी पहचान थी, उनका इतिहास था। ये बहुत दर्दनाक था, लेकिन अगर वो इससे चिपके रहते तो शायद इंटेल आज होता ही नहीं। सफल होने के लिए कई बार आपको अपने अतीत से, अपनी पुरानी सफलताओं से इमोशनली अलग होना पड़ता है।
चलिए इन आइडियाज को कुछ और उदाहरणों से समझते हैं। इंटेल वाला तो हमने देखा।
हाँ, वो तो क्लासिक केस है। जापानी कॉम्पिटिशन 10x चेंज ने SIP लाया, कंपनी में इनकार, वैली ऑफ डेथ था, ग्रोमोर की बातचीत ने ऑब्जेक्टिविटी, इमोशनल अलगाव दी, और फिर मेमोरी छोड़कर माइक्रो प्रोसेसर पर फोकस, रेन इन केओस।
दूसरा उदाहरण आपने कंप्यूटर इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर का दिया था, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, वो कैसे हुआ?
पहले IBM जैसी कंपनियां थी जो सब कुछ खुद बनाती थी, चिप्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सेल्स, सर्विस, ये वर्टिकल मॉडल था।
हाँ।
फिर आया PC का दौर, और इसमें एक नया मॉडल उभरा, हॉरिजॉन्टल। इसमें अलग अलग कंपनियां किसी एक चीज में स्पेशलाइज करने लगी,
जैसे इंटेल प्रोसेसर में, माइक्रोसॉफ्ट OS में, डेल या कॉम्पैक्ट PC बनाने में।
एकदम सही, हर कोई अपने अपने एरिया का एक्सपर्ट बन गया। ये इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर में एक फंडामेंटल शिफ्ट था, एक बड़ा SIP। इसने IBM जैसी पुरानी कंपनियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी, वो इस नए बिखरे हुए मॉडल के लिए तैयार नहीं थी।
और इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी नई कंपनियां हीरो बन गई।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि SIP सिर्फ कंपनी के अंदर नहीं, पूरे इकोसिस्टम में भी हो सकता है।
और तीसरा उदाहरण इंटरनेट। ग्रोव ने इसे भी एक 10x फोर्स माना था।
हाँ, और ये उनकी दूरदर्शिता थी। जब वो किताब लिख रहे थे 90s के मध्य में, इंटरनेट अभी नया नया था, लेकिन ग्रोव ने अपने 6 फोर्सेस फ्रेमवर्क से एनालाइज किया कि ये कैसे हर इंडस्ट्री को बदलेगा।
कैसे?
उन्होंने देखा कि इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके बदल देगा, कस्टमर से जुड़ने के तरीके बदल देगा, कंपटीशन का नेचर बदल देगा, और उनकी भविष्यवाणी काफी हद तक सही निकली।
वाकई ये फ्रेमवर्क आज भी उतना ही रेलेवेंट लगता है।
इन बिजनेस स्ट्रेटजी के पीछे ना गहरे मानवीय सबक भी हैं।
हाँ, जैसे बदलाव का डर।
बिल्कुल, चाहे कंपनी का CEO हो या कोई कर्मचारी, बदलाव से डर सबको लगता है। अतीत को छोड़ना मुश्किल होता है, अनिश्चितता घबराहट पैदा करती है। इंटेल में भी लोग डरे हुए थे मेमोरी छोड़ने से, नौकरियां जाने का डर, पहचान खोने का डर।
और यहीं पर वो किसान्ड्रा वाली बात फिर आती है, वो लोग जो सच बोल रहे होते हैं पर कोई सुनता नहीं।
हाँ, अक्सर ये वो लोग होते हैं जो कस्टमर के सबसे करीब होते हैं या फील्ड में होते हैं, वो बदलाव की आहट पहले सुन लेते हैं, लेकिन उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह हो जाती है, खासकर जब कंपनी अच्छा कर रही हो।
सफलता का नशा।
हाँ, वो आपको बहरा बना देता है। इसीलिए ग्रोव कहते थे कि लीडर्स को एक्टिवली इन आवाजों को खोजना और सुनना चाहिए। ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है अपनी ही सफलता से पैदा हुई जड़ता के खिलाफ।
और ये सिद्धांत सिर्फ कंपनियों पर ही लागू नहीं होते, आपने कहा था करियर पर भी।
बिल्कुल, ग्रोव का तर्क था कि हर इंसान को अपने करियर को एक बिजनेस की तरह मैनेज करना चाहिए, और आज तो ये शायद और भी जरूरी है।
मतलब हमें भी अपने करियर के SIPs पहचानने होंगे।
हाँ, देखना होगा कि हमारी इंडस्ट्री में, हमारी स्किल्स में क्या 10x बदलाव आ रहे हैं। AI, ऑटोमेशन, कोई नई टेक्नोलॉजी, क्या ये हमारे काम करने का तरीका बदल रही है?
तो हमें भी अपने करियर के लिए कंस्ट्रक्टिव पैरानोया अपनाना होगा, हमेशा सीखते रहना होगा।
एकदम, अब लगातार सीखना कोई ऑप्शन नहीं, जरूरत है। स्किल्स पुरानी पड़ जाती हैं, रेलेवेंट बने रहने के लिए सीखते रहना होगा। और सिर्फ सीखना नहीं, जरूरत पड़ने पर पर्सनल पिविट के लिए भी तैयार रहना होगा।
पर्सनल पिविट यानी करियर की दिशा बदलना।
हाँ, इससे पहले कि हालात आपको बदलने पर मजबूर करें, खुद ही बदलने की हिम्मत और तैयारी रखना।
संक्षेप में आप अपने करियर के CEO हैं।
बिल्कुल, आपको भी सतर्क रहना है, बदलावों को समझना है, और जरूरत पड़े तो खुद को बदलना है।
और इस पूरी बातचीत से अगर 3 मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? चलिए एक भावनात्मक सबक से शुरू करते हैं।
भावनात्मक सबक ये है कि अपने सफल अतीत को, अपनी पहचान को छोड़ना और एक अनजाने भविष्य में कदम रखना बहुत मुश्किल होता है। इंटेल का मेमोरी छोड़ना यही दिखाता है, लेकिन कई बार आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी होता है। इनकार से लड़ना, अतीत से मोह छोड़ना, ये शायद सबसे बड़ी मानवीय चुनौती है।
और एक बौद्धिक सबक, इंटेलेक्चुअल इनसाइट।
इंटेलेक्चुअल इनसाइट ये है कि स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आने ही हैं। ये 10x बदलाव होते रहेंगे, आप इन्हें रोक नहीं सकते, आप बस इन्हें जल्दी पहचान सकते हैं 6 फोर्सेस जैसे टूल इस्तेमाल करके, और फिर इन्हें नेविगेट करने के लिए ग्रोव का 2-स्टेप तरीका। पहले केओस को आने दो, फिर केओस पर लगाम कसो, यही मौत की घाटी पार करने का रास्ता है।
और आखिर में एक सार्वभौमिक सबक जो हम सब पर लागू हो,
वो ये कि ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये हम सबके करियर के लिए भी सच है। लगातार चौकन्ना रहना, सीखते रहना, और जरूरत पड़ने पर अपनी दिशा बदलने की हिम्मत रखना, यही हमें बदलते वक्त में टिकाए रखेगा। जैसा हमने कहा, हम सब अपने करियर के CEO हैं।
तो संदेश साफ है, चाहे बिजनेस हो या करियर, आत्मसंतोष सबसे बड़ा खतरा है। सतर्कता, बदलाव को महसूस करने की क्षमता और हिम्मत से दिशा बदलने की तैयारी, यही हमें आगे ले जाएगी। शायद हम सबको सोचना चाहिए हमारे अपने जीवन या करियर में अभी कौन सा SIP दस्तक दे रहा है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्ट्रस फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।